आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संस्कृतियों में विशेष अवसरों जैसे शादी या जन्मदिन पर उपहार के रूप में सोने के आभूषणों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में सोने की कीमत लगभग 70% बढ़ने के कारण बहुत से लोग इस दुविधा में हैं कि वे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें बेच दें या भावनात्मक कारणों से अपने पास ही रखें। जौहरी डैनी जॉर्जकोपोलोस कहते हैं, जहाँ तक कैरेट की बात है, नियम है जितना ज्यादा उतना बेहतर।
If you told an older Italian or Greek lady to give them something that's not 18, it's like you're swearing at them or you're cursing them, so they get their back up a bit. But that's what has changed now.
और असली बदलाव ये है कि ग्राहक अब कम कैरेट वाले सोने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब इस कीमती धातु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
Gold price has gone up. It's gone up about 40% in the last 12 months. And in 2025, from January to June, it's gone up about 20%. So it's quite a big jump.
उनकी दुकान ओरिया डिजाइन्स पर अधिकतम ग्रीक और इटालियन पृष्ठभूमि वाले ग्राहक आते हैं। ये सिडनी के अर्लवुड उपनगर की होमर स्ट्रीट पर है, जो शादी के कपड़ों का एक तरह से केंद्र माना जाता है।
A lot of crosses. We do a lot of, like, there's a bit of a christening wedding hub here. So people do come for christenings in the area. There's a couple of other shops here with bubonieres and children's clothes and that. So I do sell a lot of crosses. I do carry a lot. We do a lot of wedding bands, a lot of engagement rings.
सोने के प्रति लगाव बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 5000 वर्ष से ही इजिप्शियन लोग नाइल नदी की तलहटी में मिले सोने का इस्तेमाल श्रृंगार के लिए करते थे। ये प्राचीन यूरोपीय, मध्यम पूर्वी और दक्षिण एशियाई संस्कृतियों सहित कई सभ्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के लगभग हर हिस्से में इंसान इस चमकीली धातु को इतना क्यों पसंद करता है। प्रोफेसर नीतिका गर्ग सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में उपभोक्ता व्यवहार की शोधकर्ता हैं।
इट्स फनी राइट, सो इट्स ऑब्वियसली कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हाउ वी हैव अटैच्ड वैल्यू टू गोल्ड, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, बट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वैल्यू, वेयर इट्स कंसिडर्ड यू नो फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम गुड लक टू अ सिंबोलिज्म, विशिंग द बेस्ट टू योर क्लोज फैमिली and friends on occasion. So, and there's also research that humans have over time evolved to sort of get attracted towards jewels and gold, which is because it gives them that assurance. It's an asset, it's a resource. And just with water, food, these assets have over time evolved to hold meaning for us.
तो आखिर सोने की कीमत बढ़ने के पीछे वजह क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि भू राजनीतिक परिस्थितियां, वैश्विक अशांति और महंगाई का डर, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने और बढ़ा दिया है, इनमें से कुछ कारण हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं और निवेशक कठिन समय में इसे एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। काउंसिल के अनुसार 2024 में कुल मांग का लगभग 50% आभूषणों से, 20% केंद्रीय बैंक रिजर्व से, 7% इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपयोग से और करीब 1% चिकित्सा व दंत चिकित्सा से आया। हालांकि ऊंची कीमतों की वजह से आभूषणों की मांग कम हुई है, लेकिन कई हिस्सों में इसकी सांस्कृतिक अहमियत अब भी बहुत मजबूत है। पीटर मैक्वायर trading.com ऑस्ट्रेलिया के CEO हैं। वो कहते हैं,
First off, let's look at Asia and that corridor from really Australia all the way up to Japan. And you've got China in there and the likes of Malaysia. We all understand the depth of those countries from a population standpoint. And gold has been a source of value or a source of family value for literally millennia. And that holding of gold has been one of dowries or placing under beds or weddings or festivals that you have throughout your year, christenings, anything like that is very much a gift that someone would gift some form of gold to someone. Then you roll it across to the likes of Bangladesh, India, Pakistan and the Middle East, and you've really captured again, the best part of probably and 2 billion people. It's a big store of value, certainly in the likes of India. It's very much a part of their culture, their heritage, and certainly their belief as far as a store of value.
करीब 8-9 महीने के बच्चे को गोद में लिए अजय और उनकी पार्टनर सिडनी के हैरिस पार्क में गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। ये इलाका कुछ जेवरों की दुकान के लिए जाना जाता है।
It's a ritual for us, to be honest. On every on festivals and occasions, and a kid is born, we buy gold. And Diwali, the festival of lights, we buy gold, and we put that in a for temple as well, for worshipping as well. Yeah.
दुकान के मालिक का अनुमान है कि उनके लगभग 90% ग्राहक दक्षिण एशियाई देशों से आते हैं। अक्षत शर्मा अपने पिता के साथ अक्षरा ज्वेलरी चलाते हैं।
Generally, it's necklace sets and bangles, pretty heavy stuff. So the bride side will gift the groom side will gift the bride. They'll obviously gift the rings as well. They'll give some rings, or for the bride, it'll be necklace sets and bangles, and they're generally pretty heavy so that they last a very long time.
पश्चिमी सिडनी का हैरिस पार्क प्यार से लिटिल इंडिया कहलाता है। 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ की लगभग 45% आबादी भारत में जन्मी है। ये उपनगर किराना दुकानों, रेस्टोरों, कपड़ों और गहनों की दुकानों से सजा हुआ है। 22 कैरेट सोना दक्षिण एशियाई लोगों की पहली पसंद है। आज के महंगे सोने के बाजार में ये एक कीमती तोहफा है। हालांकि इसने आशिमा को नहीं रोका, जिन्होंने अभी अभी अपने मंगेतर के लिए तोहफा खरीदा है।
इन आवर कल्चर, इफ आई गिव हिम समथिंग मेड ऑफ गोल्ड, आई डोंट हैव टू डिसाइड एनीथिंग एल्स। It's like a prestige issue also, and it's like a property value also, like an investment. So he would not say, why did you spend it? Because he would love it. I got him a locket. It has the name of my state. Originally, I come from Punjab. So it was a locket with the name of Punjab initialed on it. And it's in our mother tongue. It's written in Punjabi, not in the English language. So that's what I thought that he would love it, and he would also have an emotional connect with that.
प्रोफेसर नीतिका गर्ग कहती हैं कि उपभोक्ता व्यवहार और संस्कृति अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
Yeah, most of South Eastern cultures in particular have high value on this. And if you look at their tradition, especially around marriage or birth of a child, there will be significant investment or exchange of gold, whether it's in terms of jewelry or bullion. And I obviously know about India from personal experience, but also I know friends from Vietnam, Thailand, everywhere, even China. It is a big deal in terms of personal and social exchanges.
लेकिन वे ये भी बताती हैं कि सोने की आसमान छूती कीमतें भारत के मध्यम वर्ग पर काफी दबाव डालती हैं।
I have obviously family and friends in India. There is still the expectation, right? If it's a marriage of your daughter or your son, you are expected to sort of make jewelry for them or gift jewelry to the other party. So there is pressure, and it is obviously hurting the middle class more because they don't have quite the give. You know, the very poor and the very rich. Options are either too many or really no options. But the middle class, at least in India, I can see they're hurting a little bit because it changes your dynamics, right? How much you could give with the same amount of money. That's and now gold is so expensive, it's like literally you can't touch it.
Akshat Sharma कहते हैं कि दुकान पर अब खरीदने के बजाय बेचने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है.
People have jewelry from 10, 20 years ago that they still sell to us, or from their grandparents and stuff that have passed away. And generally, also the cost of living has gotten people to sell more as well. People can't afford to live, so they just start selling off old jewelry that they have from generations ago. We get a lot of that.
Vince तुर्की मूल के ऑस्ट्रेलियाई हैं। तुर्की संस्कृति में भी सोने को उपहार के रूप में, खासकर शादियों और जन्म के अवसर पर विशेष महत्व दिया जाता है।
I had a thick chain that I bought when I was a bit younger. But I was hanging on to it. It was about 100 grams. So it was a bit of a medium-sized chain. So yeah, I sold that about six months ago.
सोने को कठिन समय में सहारा बनने वाली योजना के रूप में एक मूल्यवान संपत्ति भी माना जाता है। शादियों में मेहमानों से उम्मीद की जाती है कि वे सोने के सिक्के या आभूषण देंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि खदानों से उत्पादन वैश्विक सोने की आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है, आमतौर पर हर साल करीब 75%, जबकि शेष हिस्सा रिसाइकल से आता है। अमेरिका का पर्यावरण समूह अर्थवर्क्स कहता है कि दुनिया में 2000 से अधिक खनन की बड़ी कंपनियां हैं, जिनके अलावा असंख्य छोटे छोटे पारंपरिक खनन स्थल भी हैं। समूह का कहना है कि ये खदानें प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं और बहुत कम ही कंपनियां पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाती हैं। विभिन्न अध्ययनों का कहना है कि सोने का रिसाइकल मौजूदा वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे खनन पर निर्भरता कम होगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि वार्षिक सोने की मांग का लगभग 1/4 हिस्सा पहले ही रिसाइकल से पूरा हो रहा है और इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाकर और बढ़ाया जा सकता है। वे ये भी कहते हैं कि खनन कंपनियों के लिए जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके अपनाकर सोने का दोहन करना प्राथमिकता होनी चाहिए। SBS न्यूज से पेगी जाकुमलोस की इस खबर को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS हिंदी से वृषाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।